मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 12 फरवरी 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस मुख्य विषय के तहत मैं आपसे कल के ही विषय को आगे बढ़ाने जा रहा हूं। कल हम लोग बात कर रहे थे उत्तर लिखने की चुनौती पर, आप इसे उत्तर लिखने की चुनौती का भाग दो मान सकते हैं। इनफैक्ट कल के अपने मुख्य विषय के तहत मैंने एक ही बात अलग अलग तरीके से उदाहरणों के जरिए आपको समझाने की या ये कह लीजिए कि आपके दिमाग में बिठाने की उतारने की कोशिश की थी मित्रों, और वह यह कि आप सबसे पहले प्रश्न को समझने की कोशिश करें। यह सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि मैं जानता हूं, ये मेरा अनुभव भी रहा है कि जब स्टूडेंट्स से ये कहा जाता है कि प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए तो उसके मुंह पर हल्की सी व्यंगात्मक मुस्कान की झलक उभर आती है। वो इस मायने में व्यंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि सर आपको क्या लगता है कि हम इतना पढ़ लिख करके यहां तक पहुंच गए हैं और हमको प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा है, आप ये क्या मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। नो डाउट मित्रों ये आपका अपना भाव हो सकता है, आपके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन अभी तक के अनुभव जो मुझे बताते हैं, जो जिन्होंने मुझे सिखाया है वो यही, सिविल सर्विस के बारे में मैं बात कर रहा हूं, कि स्टूडेंट प्रश्न को समझ ही नहीं पाते और लिखना शुरू कर देते हैं। अब आइए आगे की जो चुनौतियां हैं इसी को हम बढ़ा करके देखते हैं। दरअसल होता क्या है, देखिए होता यह है, इस पर मैंने बहुत ही मनोवैज्ञानिक अध्ययन किए हैं, बहुत ही स्टूडेंट से बात की है, और मैं मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद अपने निष्कर्ष आपको बता रहा हूं। जरूरी नहीं कि ये मेरे निष्कर्ष बिल्कुल नए ही हों, इससे पहले भी लोगों ने इस पर बातें की होंगी, क्योंकि इसके सिवाय और मुझे कुछ दूसरा दिखाई नहीं पड़ता है। होता क्या है कि जब आप कोई भी प्रश्न पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपको उस प्रश्न का जो सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वह दिखाई पड़ता है, वह सुनाई पड़ता है। इस बड़े पार्ट को मैं कहूंगा टॉपिक, यानी कि हर प्रश्न का कोई ना कोई एक टॉपिक होगा, एक बड़ा टॉपिक, राइट? तो जैसे ही आप सुनते हैं आपके दिमाग पर, आपके क्या सबके दिमाग पर जिसमें मैं भी शामिल हूं, हम लोगों के दिमाग पर वह टॉपिक हावी हो जाता है। अच्छा यह प्रश्न है, अच्छा इससे संबंधित है। अब जैसे ही हम उस टॉपिक को सुनते हैं हमारा दिमाग एक तरीके से यूं कह लीजिए कि आगे सुनना बंद कर देता है। उसको लगता है कि यार हां पकड़ में आ गया, हां समझ में आ गया। यह ठीक उसी तरह से जैसे कि अभी आपका स्टेशन आया नहीं है, 15-20 किलोमीटर दूर है, लेकिन आप एकदम हड़बड़ा उठते हैं, सामान की पैकिंग वैकिंग करने लगते हैं और बेवजह आकर के अपने ट्रेन के कंपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, जबकि आपको मालूम है कि यहां ट्रेन 15 मिनट रुकती है, आपके पास पर्याप्त समय है, आप बड़े आराम से उतर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही दिमाग ने यह सोचा कि स्टेशन आने वाला है, उसका तर्जुमा यानी कि उसका ट्रांसलेशन आपने क्या किया मालूम है, एक्शन ने क्या किया, क्योंकि सोच और इसके बाद एक्शन, तो एक्शन उसमें यह है कि जो स्टेशन है वो आ गया है, वो कह रहा है कि स्टेशन आने वाला है, लेकिन हमने उसको ट्रांसलेट कर लिया अपने एक्शन में कि स्टेशन आ गया है और हम कंपार्टमेंट के गेट पर पहुंच जाते हैं कि स्टेशन आ गया है, और फिर मन ही मन झुंझलाना शुरू कर देते हैं, बेचैनी होने लगती है कि यार स्टेशन अभी तक आया क्यों नहीं। अब आप देखिए कि हमारे अंदर का सारा संतुलन खत्म हो गया। मित्रों प्रश्नों के साथ भी यही होता है, हम प्रश्न पढ़ते हैं, टॉपिक हमारे दिमाग में इतना ज्यादा हावी हो जाता है, फिर उस टॉपिक से जुड़े हुए जो दूसरी चीजें हैं, जो बारीकी चीजें हैं, बारीक चीजें हैं जो इस टॉपिक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमसे मिस हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, वो हमारी पकड़ में नहीं आते। अब मुझे उत्तर लिखना है, तो जब मुझे उत्तर लिखना है तो स्वाभाविक है कि मैं किसको तरजीह दूंगा। आप बताइए आप किसको तरजीह देंगे, सीधी सी बात है कि आप टॉपिक को तरजीह देंगे, क्योंकि टॉपिक ही अब दिमाग पर हावी है, उसने दिमाग के जो दूसरे क्षेत्र हैं उन पर कब्जा जमा लिया है, जो बारीकियां हैं उनको ढक लिया है, और हम पूरी तरह से कन्विंस हैं इस बात से कि यही प्रश्न है, और हम लिखना शुरू कर देते हैं। बस वहीं हमने गलत दिशा का चयन कर लिया है, उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। मित्रों, उदाहरण के तौर पर चलिए मैं आपको एक प्रश्न बताता हूं जो 2018 के सामान्य अध्ययन के प्रथम पत्र प्रश्न पत्र में पूछा गया था। ये जनरल स्टडीज मेंस की मैं बात कर रहा हूं। देखिए कितना सरल सा प्रश्न है और बहुत ही छोटा प्रश्न है और पहला ही प्रश्न है, इसीलिए मैंने जानबूझ करके इसे चुना है। प्रश्न है, भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। 150 शब्द, ध्यान दीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है, फुल स्टॉप, चर्चा कीजिए, फुल स्टॉप, इन ब्रैकेट, उत्तर 150 शब्दों में दें। इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूं फ्रेंड्स, सेफगार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज द नीड ऑफ द मोमेंट, डिस्कस, इन ब्रैकेट, आंसर इन 150 वर्ड्स, राइट। अब देखिए कि जैसे ही मैं यह प्रश्न पढ़ता हूं तो मेरे दिमाग में क्या टॉपिक आता है। सीधी सी बात है कि ये कला की जो हमारी विरासत है उनके संरक्षण पर यह प्रश्न है, ठीक है। तो जैसे ही मैं यह सोचता हूं कि इसके संरक्षण पर यह प्रश्न है, मैं लिखने की शुरुआत कर देता हूं। जब मैं लिखने की शुरुआत कर देता हूं तो मेरी जो पुरानी आदत है वो बहुत बुरी तरह से मुझे ओवरटेक कर लेती है, या कह लीजिए कि अपना आधिपत्य जमा लेती है। मेरी पुरानी आदत क्या है कि नहीं, पहले मैं ये बताऊं कि ये जो भारतीय कला जिसे हम कह रहे हैं तो ये कला होती क्या है, कला हम कहते किसको, अगर मैं जानता हूं तो लिखूंगा, और नहीं जानता हूं तो ठीक है फिर मैं शुरू करूंगा कि नहीं कला के कौन कौन से रूप होते हैं, कितनी तरह की कलाएं होती हैं। और मित्रों जैसे ही मैं इसमें उलझता ही चला जाता हूं, क्योंकि मैंने गलत दिशा का चयन कर लिया। देखिए मैं जो लिख रहा हूं वो कला पर ही लिख रहा हूं, कला की विरासत पर ही लिख रहा हूं, और बीच बीच में मैं, बहुत संभव है अगर मैं थोड़ा सा चालाक हूं या थोड़ा सा होशियार हूं तो संरक्षण शब्द की भी छोंक लगाता रहूंगा, लेकिन मैं ये भूल जाता हूं कि छोंक जो है वो दाल का स्थान नहीं ले सकती। दाल में आप छोंक लगा सकते हैं, छोंक छोंक से ही बात बनेगी नहीं, वो चीज अधूरी रह जाएगी। अब मैं अगर थोड़ा सा रुक कर इस पर विचार करने की कोशिश करता हूं, इस पर विचार करता हूं, तब मुझे उसकी जो बारीकी है वो दिखाई देंगी। इसकी बारीकी क्या है मित्रों, बारीकी देखिए, भारतीय कला विरासत का संरक्षण ये टॉपिक है। इसकी बारीकियां क्या है, जो बहुत ही सरल है, जो बहुत ही ऑब्वियस है, ये एक तरीके से बहुत ही मोटा प्रश्न है, मैं कहूंगा सरलतम प्रश्न है जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। जटिल प्रश्न तो मैंने उठाया ही नहीं है, जटिल प्रश्नों की जटिलता और उनके चैलेंजेस तो और भी बड़े हैं और इनसे कई गुना ज्यादा बड़े हैं, उस पर हम लोग फिर बाद में कभी बातें करेंगे। पहले हम सरल को तो देख लें, क्योंकि सरल ही हमें धोखा देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये सरल है। अगर सरल है तो हमें अधिक ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बीमारी बहुत छोटी सी है, बुखार है, सर्दी जुकाम है, और पता लगा कि वही बुखार और सर्दी जुकाम या तो स्वाइन फ्लू था या न्यूमोनिया में कन्वर्ट हो गया और हमारे जीवन का अंत करने का कारण बन गया, क्योंकि हम सोच रहे थे कि सामान्य बीमारी और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, जितना दिया जाना चाहिए था उतना नहीं दिया, यही होता है। इसकी बारीकियां क्या है, पहला है वर्तमान समय, अभी की बात है, अभी की जरूरत है, करंट नीड ऑफ द मोमेंट, अभी ऐसा क्या हो गया भाई कि इसकी जरूरत हो गई, क्या इसकी पहले जरूरत नहीं थी? तो आपको इस वर्तमान को ध्यान में रखना होगा कि आज की जरूरत क्यों है, पहली बात। सामान्य जरूरत की बात नहीं कर रहा है, देखिए वैसे तो कला विरासत के इसका संरक्षण हर समय की जरूरत होनी चाहिए और है भी और हम किताबों में पढ़ते भी हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, आज ऐसी क्या बात हो गई कि वो वर्तमान की एक जरूरत बन गई है। और याद रखिए फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान समय इसकी बारीकी है, और दूसरी जो बारीकी है वो है आवश्यकता, नीड ऑफ द मोमेंट। वो दूसरी चीजों पर नहीं पूछ रहा है, क्या क्या किया जा रहा है इस पर नहीं पूछ रहा है, क्या क्या किया जाना चाहिए इस पर नहीं पूछ रहा है। अगर आप इसको और सरल बनाना चाहें तो आप कह सकते हैं कि क्यों किया जाना चाहिए इस पर पूछ रहा है, क्यों किया जाना चाहिए इस पर पूछ रहा है, और साथ ही कह रहा है वर्तमान समय में। अब आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है कि क्यों किया जाना चाहिए, दूसरा यह है कि आज क्यों किया जाना चाहिए। और फिर कह रहे हैं कि चर्चा कीजिए। चर्चा कीजिए का मतलब है कि इसके जो पॉइंट्स हों, उसके जो डाइमेंशंस हों, उन डाइमेंशंस को आप रख दीजिए। यहां आपको इवेलुएट नहीं करना है, इसका आलोचनात्मक परीक्षण नहीं करना है, इसका आपको मूल्यांकन नहीं करना है, आपको अपनी बात बहुत सीधे साधे तरीके से करनी है, लेकिन टिप्पणी के अंदाज में नहीं। देखिए, जो टिप्पणी होती है वो क्या होती है, आप सीधे सीधे चीजें लिख दीजिए, है ना। सीधे सीधे जब आप वर्णन करते हैं तो क्या है, आप किसी के सौंदर्य का वर्णन करेंगे, जैसे मान लीजिए उसके सौंदर्य का वर्णन कीजिए, तो जैसा देखेंगे आप वैसा लिख देंगे, जैसा है वैसा आप लिख देंगे, तो वो वर्णन हो गया। लेकिन यहां वर्णन की बात नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डिस्कस कीजिए। आप किसी भी इश्यू पर जब किसी के साथ डिस्कस करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उस तरह से इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स को लेकर के चलते हैं। लेकिन वो जो जितने भी एंगल्स होंगे, जितने भी कोण होंगे, याद रखिए उनकी सीमाएं क्या होंगी, किन मर्यादाओं के तहत आपको अपने डिस्कशन को सीमित करना है, वो पहला होगा समय की आवश्यकता, अभी के समय की आवश्यकता। समय और आवश्यकता, ये दो लाइनें एक तरफ खींची जाएंगी। और इसके बाद 150 शब्द, ये 150 शब्द भी आपको ये बताते हैं कि इसमें आपको किन किन बातों की चर्चा करनी है। 150 शब्द आपको कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि आपको किन किन बातों को लिखना है, बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाना है, राइट। अब जब आप इतनी बातें समझ लेते हैं, फिर जब आप सिविल सर्विस के लिए आंसर लिख रहे हैं मित्रों, तो आपके दिमाग में थोड़ी देर के लिए, 10 सेकंड के लिए एक प्रश्न आना चाहिए, और वो प्रश्न इस तरह का हो कि यार ये प्रश्न अभी पूछा क्यों गया है। भारतीय कला विरासत का संरक्षण, वर्तमान समय की, अब देखिए अगर वर्तमान समय शब्द इस्तेमाल किया गया है तो आपके दिमाग में क्लिक तो होना ही चाहिए कि इसका कोई ना कोई संबंध तो अभी से है, साल 1.5 साल 2 साल से है, जिसे आप और सरल भाषा में कह लीजिए कि करंट अफेयर्स से है। तो वो करंट अफेयर्स क्या है, हो सकता है कि आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, फिर तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन एक करंट अफेयर्स है। हम लोगों ने, मैंने अपने डेली ऑडियो लेक्चर में इसकी विस्तार से चर्चा की थी, और आप देखिए कि मैंने जो 250 प्री एग्जाम के लिए क्वेश्चन सेलेक्ट करके दिए हैं उसमें यह मेंशन किया हुआ है कि सरकार ने बकायदे एक कानून पारित किया था, और आप फिर पाएंगे कि मैंने बहुत से आप लोगों को आर्टिकल्स प्रोवाइड किए और ये इशारा किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अखबारों में जो छपे थे, और वो ये था कि बहुत से हमारे जो हेरिटेज हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जैसे लाल किला वगैरह, तो ये प्राइवेट सेक्टर को दिए जा रहे हैं क्योंकि सरकार के पास उतने फंड्स नहीं है कि उनका सही तरीके से संरक्षण कर सके, तो प्राइवेट को दिया जा रहा है कुछ शर्तों के साथ कि आप इतना इतना अपना विज्ञापन के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे, इससे आप टिकट लगा सकेंगे, आप इसे डेवलप कीजिए, यहां पर दूसरे सुविधाएं उपलब्ध कराइए, संरक्षण कीजिए और आप कमाइए भी। और इसको लेकर के दोनों ही पक्ष थे, कुछ लोग इसकी तारीफ कर रहे थे, कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे थे। तो अगर आपके दिमाग में यह कौंध गया कि नहीं, ये तो करंट से संबंधित है, तो अब आपको लिखने में यह चालाकी दिखानी चाहिए, चालाकी जरा सा निगेटिव टाइप का शब्द होता है, आपको यह सावधानी दिखानी चाहिए कि आप इसको कहीं ना कहीं मेंशन कर सके। और मुझे लगता है कि क्या इस प्रश्न की शुरुआत ही इस तरह के मेंशनिंग से नहीं हो सकती। जैसे ही आप इस तरह से शुरुआत करते हैं कि सरकार ने एक कानून परिवर्तित करके और इसे इस तरह से निजी क्षेत्र के लोगों को देने की शुरुआत की है, तो एग्जामिनर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसको समझने के लिए बस थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को एग्जामिनर बना लीजिए कि अगर मैं एग्जामिनर हूं और कोई लड़का इस तरह से अपने उत्तर की शुरुआत करे तो आपके दिमाग में उसके प्रति क्या धारणा बनेगी। तो दोस्तों, वक्त जितनी देर के लिए मुझे इजाजत दे रहा था उतनी देर के लिए मैंने इस बिंदु पर भी कि कैसे आप उनकी बारीकियों को पकड़ेंगे, कैसे एग्जामिनर पर अपना इम्पैक्ट डाल पाएंगे, कैसे प्रश्न को समझेंगे, कुछ बताने की कोशिश की है। और अब मैं अपने इस मुख्य विषय को इसके साथ ही यहां समाप्त करना चाहूंगा। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको उपलब्ध करा रहा हूं, आप सब लोग अपने अपने ढंग से देख लीजिएगा। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ ही साथ दोस्तों, मैं अब आप लोगों से इजाजत भी लेता हूं। नमस्कार।